Om Shanti and Namaskar. It's a great pleasure to see all of you and I extend a very, very hearty welcome. आप सभी का मैं बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं. दोस्तों, हम जानते हैं कि एक मजबूत बिल्डिंग के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत होती है. A strong building requires an equally strong foundation. And to get a strong foundation, engineers keep on excavating the earth till they're able to find very strong, very stable earth or rocks. कभी कभी जब हम ब्रिज से यात्रा करते हैं ना, तो वो नदी या सागर को देखते हैं और हमको लगता है ये ब्रिज इतना स्ट्रांग कैसे बना. थोड़ा सा अगर हम इस पर विचार करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि उस सागर या नदी के उस सतह तक लोग पहुंचते हैं जहां पर वो स्टेबिलिटी होती है और उस स्टेबल भूमि पर से वो पिलर्स को उठाया जाता है. माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस. It's all about control. It is all about equilibrium. It is said, when stability becomes a habit, maturity and clarity automatically comes into a life. And that is the topic for today's discussion. Being stable, the mantra for life. Let's try to understand what do we mean by mantra. Mantra means man plus tantra. अर्थात मन को स्टेबल कैसे रखें, उसका तंत्र, उसका टेक्नोलॉजी, उसका फिलॉसफी, द साइंस, द प्रोसेस, द मैकेनिज्म, द फ्लो चार्ट. एंड देयरफॉर टुडे लेट्स लिसन टू अ वेरी वंडरफुल मंत्र विच विल हेल्प डायरेक्ट आवर थॉट्स टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट स्टेबिलिटी इज ऑल अबाउट. चलिए हम ये सुंदर सा मंत्र सुनते हैं.
समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निन्दा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान मे प्रियो नरः.
दोस्तों, अभी हमने ये सुंदर सा मंत्र सुना जहां पर स्थिर मन क्या होता है हमने समझा, राइट? सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, निंदा स्तुति, राइट? ठंडी गर्मी में भी मेरा मन हलचल में ना जाए, मेरा मन अचल रहे, अडोल रहे, और उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं. अब प्रश्न उठता है कि ऐसे मन को हम अचल, अडोल, स्थित प्रज्ञ कैसे करें, और उसके लिए आज हम फिजिक्स को भी समझेंगे और मेटाफिजिक्स को भी समझेंगे. कहते हैं वेयर फिजिक्स एंड्स मेटाफिजिक्स स्टार्ट्स. हम उस विज्ञान को समझेंगे और उस विज्ञान के आधार पर अपने जीवन में हम कैसे अप्लाई करें वो भी हम आज समझने की कोशिश करेंगे. सो फ्रेंड्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी व्हाइल वी आर सिटिंग. जब हम बैठते हैं तो हमारा जो शरीर का जो वेट है वो नीचे एक्ट करता है थ्रू ग्रेविटी, और हमारी पृथ्वी जो होती है वो नॉर्मल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्सर्ट करती है जिसके कारण हम इक्विलिब्रियम में रहते हैं. तो दोस्तों, हमने देखा कि जब हम बैठते हैं वो स्थिरता का विज्ञान को हमने महसूस किया. कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं, कैसे एक्शन और रिएक्शन के बीच में वो मैनेजमेंट होता है जिसके कारण हम स्थिर रहते हैं, राइट? अब हम लोग इसको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट के रूप में, प्रयोग के रूप में देखने की कोशिश करेंगे. जैसे ये मेरे पास एक मार्कर पेन है एंड दिस इज अ मोबाइल फोन. अब इस मोबाइल फोन को मुझे स्टेबल रखना है, इसका अपना एक वेट है, तो अगर मैं इसको छोड़ता हूं तो ऑटोमेटिकली वो नीचे की तरफ आएगा, ग्रेविटी विल पुल इट डाउन. और इस मोबाइल फोन को मुझे इस मार्कर पेन में ऊपर स्टेबल करना है, राइट? तो देखिए, मैं कोशिश करता हूं. यस, सो द मोबाइल फोन इज एब्सोल्युटली स्टेबल एंड इट इज स्टैंडिंग वेरी स्टिल ऑन दिस व्हाइट बोर्ड मार्कर पेन. ओके, जब मैंने ये प्रोसेस किया तो मुझे दो चीज जानना बहुत जरूरी था. एक, मुझे वो पॉइंट ढूंढना था वेर इन द एंटायर रिजल्टेंट फोर्सेस, जो इस मोबाइल का जो सारा वेट कहां पर है, वो पॉइंट ढूंढना बहुत जरूरत है। और उस पॉइंट को ढूंढकर उस जगह पर जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, उस जगह पर मैं एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स जब देता हूं, तब ये मोबाइल इस मार्कर पेन के ऊपर स्टेबल बैठता है। राइट, दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। अब इसको जीवन में हम यूज करने की कोशिश करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज अगर हम समाज में देखते हैं और हमारी मन की अवस्था को थोड़ा सा हम एनालाइज करेंगे, तो चारों तरफ डर, भय, देयर इज सो मच ऑफ फियर, स्ट्रेस, टेंशन, इनसिक्योरिटी, मन इतना हलचल में है। और ऐसा मन जो इतना हलचल में है, उस मन को हम स्टेबल करने के लिए दो बातें पता लगाना जरूरत है। एक, द पॉइंट वेर इन ऑल दिस फोर्सेस, क्योंकि जो संकल्प है ना, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एन एनर्जी, इट इज समथिंग वी कॉल इट इज अ थॉट एनर्जी। तो कौन सा पॉइंट है जहां पे सारा जो ये एनर्जी फोर्सेस एक्ट कर रहा है, और उस जगह पर एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स देंगे तो मेरा मन शांत, शीतल और स्थित प्रज्ञ की तरफ जा सकता है। तो अब प्रश्न उठता है कि वो पॉइंट कौन सा है। अक्सर हम कहते हैं ना ह्यूमन बीइंग, और आज हमारा टॉपिक है बीइंग स्टेबल। अब हमने देखा जब हम बैठते हैं तो शरीर का जो वेट नीचे एक्ट करता है, वहां पर एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होगा तो हमारा शरीर स्टेबल हो सकता है। यहां तो हम मेटाफिजिक्स की बात कर रहे हैं ना, तो ये जो सारा संकल्प शरीर में एक्ट नहीं कर रहा है। हाँ, शरीर में उसका इफेक्ट जरूर होता है, लेकिन द बीइंग पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर हमको यह समझना जरूरी है कि हम ये शरीर नहीं है, इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति है, द बीइंग, जिसको आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। दोस्तों, ये वर्षों से हमने काफी बार सुना है, आपके लिए और मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज जो सबसे बड़ा जो डर, तनाव और स्ट्रेस जो है, दैट इज अ फियर ऑफ डेथ। मैं 2-3 महीने से जब पेरेंट्स और टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करता हूं, तो मुझे ये फीडबैक मिला है, काफी पेरेंट्स ये कहते हैं, अगर लॉकडाउन खत्म भी हो गया और उस स्कूल में जाने का परमिशन भी अगर दिया गया, तो मैं अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजूंगी, क्योंकि माता पिता को बच्चों से इतना स्नेह प्यार, लेकिन स्नेह प्यार के साथ ये बहुत बड़ा चिंता, डर, भय। इसे ऐसे समय पर जो मृत्यु के डर और भय को निकालने के लिए, चलिए दोस्तों हम एक बहुत अच्छा सा मंत्र सुनते हैं।
न जायते नियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे।
सो माय डियर फ्रेंड्स, वी हर्ड दिस वंडरफुल मंत्रा विच स्पीक्स अबाउट, हमको ये बताया जाता है कि आत्मा अमर है, अजय है, अविनाशी है। तो मुझे लगता है ऐसी विकट परिस्थिति में हम आराम से बैठें और इस बात को महसूस करें। सबसे पहले बात कि मैं एक चैतन्य ऊर्जा हूं, जो अमर हूं, जो अविनाशी हूं। और जब ये रियलाइजेशन होने लगता है, आई एम श्योर our mind would start becoming stable. This is the first step of meditation. Now, let's go on to the second phase. लेकिन ऐसे बहुत सारे दोस्त भी हैं जो जिनकी responsibilities बाहर है, and at this particular time, I would love to express an attitude of gratitude to the doctors, to the nurses, to the paramedical staff, to the administration, to those people who are responsible for cleaning, hygiene, and many people. अब इनको तो बाहर जाना है ना। जब हम बाहर जाते हैं तो वहां पर हम अपने मन को कैसे स्टेबल करें, इसका हम पहले फिजिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। एक जगह बैठे हैं तो शरीर स्टेबल होता है, लेकिन जब हम चलते हैं तो कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं और कैसे हम स्टेबल बनते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इट। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाइल वॉकिंग व्हिच आर ऑल द फोर्सेस दैट इज एक्टिंग ऑन अस। एक तो हमारा वेट होता है, पृथ्वी के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन होता है, लेकिन जो रास्ते का होता है रोड में, देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज अ फ्रिक्शनल फोर्स। और ये फ्रिक्शनल फोर्स को काउंटर करने के लिए वी हैव आवर इंटरनल फोर्सेस, आवर मस्कुलर फोर्सेस। तो अभी हमने देखा कि चलते वक्त कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते हैं, राइट? हमारा वेट और पृथ्वी जो नॉर्मल रिएक्शन दे रही है उससे तो बैलेंस होता ही है, लेकिन हम चलते कैसे हैं, तो उसमें हमने देखा एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है। मतलब हमारा जो धरती के साथ जो कांटेक्ट होता है तो वहां पर एक फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन इज नॉट ऑलवेज बैड, इट हेल्प्स अस टू मूव, राइट? लेकिन हम आगे तब चल पाते हैं जब हमारी जो शारीरिक शक्ति है, हमारा जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है, वो जब फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होता है तब हम आगे की ओर बढ़ पाते हैं। एंड दिस इज द ब्यूटी दैट वी अंडरस्टूड फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ वॉकिंग थ्रू साइंस और थ्रू फिजिक्स। ओके, उसी तरह दोस्तों जब आप अपने कर्म क्षेत्र पर जाते हो, आई डू अंडरस्टैंड द लॉट ऑफ चैलेंजेस, बहुत सारी चुनौतियां हमारे पास है, लेकिन हम तभी इस जीवन रूपी यात्रा में इस चुनौतियों को पार कर सकेंगे जब हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि जब हम कर्म क्षेत्र पर जाते हैं या हमारे जीवन व्यवहार में, वो कौन कौन से फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं, राइट? ये फ्रिक्शनल फोर्सेस जो हमारे इस जीवन व्यवहार को रोकने की कोशिश करते हैं और जिसको हमको ओवरकम करना है। तो आप सबके लिए एक बहुत प्यारा सा मंत्र मैं लेकर आता हूं, जिस मंत्र को हम सुनते हैं और हम ये महसूस करेंगे कि ये कौन कौन से हमारे जीवन में ये फ्रिक्शनल फोर्स है, चैलेंजेस है, जिसको हमें ओवरकम करना है।
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेयः तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परं गतिम्।
तो दोस्तों इस सुंदर से मंत्र में हमने जाना कि हमारे जीवन का जो एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट या फ्रिक्शन है वो नेगेटिव एनर्जी है, जिसको बॉडी कॉन्शियसनेस या लस्ट कहते हैं, क्रोध है, लोभ या ग्रीड कहते हैं। और इस फ्रिक्शनल फोर्सेस को जब हम ओवरकम करते हैं बाय बीइंग गुड, राइट, हमारे अंदर जब धीरे धीरे जब हम दिव्यता को लेकर आते हैं तो हम जीवन में बहुत प्यार से आगे बढ़ते हैं। तो चलते वक्त कर्म क्षेत्र पर हम स्टेबल रहने के लिए हमें इन इंटरनल फोर्सेस को बढ़ाना बहुत बहुत जरूरी है। मुझे याद आता है कि दो दिन पहले मैं ड्राइव कर रहा था और मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी थे। ड्राइव करते वक्त हमने देखा कि रास्ते में सभी लोग मास्क पहने थे, तो मेरा फ्रेंड ने कमेंट किया, देखो देखो सभी लोग मास्क पहन रहे हैं। तो मैंने कहा कि सभी लोग मास्क पहने हैं तो इससे हमको जीवन में क्या सीखने को मिलता है। तो मेरा गुड फ्रेंड पीछे बैठा था, उसने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी भाई हमने जीवन में इतने गलत कर्म किए हैं कि आज किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। और जैसे ही इस दोस्त ने कहा, मुझे इतनी हंसी आई, तो मैंने कहा दैट इज वेरी वेरी ट्रू, लेकिन इसमें हम कौन सी एक नई बात सीख सकते हैं। तो मेरा बाजू जो दोस्त बैठा था उसने बड़ी वंडरफुल बात कही, नहीं पूरा चेहरा तो ढका नहीं है ना, अभी एक चीज जिसके द्वारा हम देख सकते हैं वो है हमारे नेत्र, अवर आईज। और फिर उन्होंने कहा, कैन वी मेक आर आईज वेरी पीसफुल, वेरी प्योर एंड सर्टनली फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय, दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों हम लोग जो पूरा मैक्सिमम जो कम्युनिकेशन करते हैं ना, इट इज थ्रू आर आईज। इसलिए कहते हैं ना, आंखों ही आंखों से प्यार भी हो जाता है और आंखों से ही क्रोध भी नजर आता है। और फिर मैंने कहा एटलीस्ट प्रकृति ने हम मनुष्यों को ये थोड़ा तो समय दिया है जहां पर उन्होंने हमारे नेत्र को यूज करने की एक परमिशन दी है। तो क्या दोस्तों हम अपने उस दृष्टिकोण को रूहानियत बना सकते हैं? कैन वी मेक अ पर्सपेक्टिव वेरी वेरी स्पिरिचुअल? इसे जब हम कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो हम हर व्यक्ति के उस मस्तक मणि को देखें एंड थ्रू आवर आईज वी कैन कम्युनिकेट दैट आई द बीइंग इज वेरी वेरी पीसफुल। जब हम अपने उस डिवाइन क्वालिटीज पीस के बारे में देखेंगे तो ऑटोमेटिकली द वाइब्रेशंस ऑफ पीस विल ऑल्सो फ्लो फ्रॉम आर आईज एंड सर्टनली फ्रॉम आर फोरहेड ऑल्सो। सो पीस, आई द बीइंग इज वेरी वेरी प्योर एंड आई द बीइंग इज वेरी वेरी पावरफुल। इसे मुझे लगता है कभी कभी जब हम लोग मेडिटेशन में बैठे ना तो ये आप जरूर अभ्यास कर सकते हैं, एटलीस्ट घर में बैठे। तो मैं चाहूंगा आप सभी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, माई डियर फ्रेंड्स, माई डियर डॉक्टर्स, माई डियर वंडरफुल पीपल हु आर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, तो मैं चाहता हूं आप बच्चों को ये जरूर सिखाना कि जब वो बैठे तो अपने पास वो मिरर ले। आजकल तो बच्चे कितना ज्यादा सेल्फी भी खींचते हैं। सो सेल्फी जब हम खींच रहे हैं तो मास्क के द्वारा खींचने से कैसे मजा आएगा? लेकिन जब हम मास्क पहने भी हैं तो उनको कहना आपके आंखों में वो शांति, वो पवित्रता, वो शक्ति नजर आ रही है। एंड दिस कैन इजिली बी पॉसिबल व्हेन वी गेट इन टच विद अ डिवाइन इनेट क्वालिटीज ऑफ द सेल्फ। मे बी नेचर हैज गिवन अस अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू एक्सप्लोर दिस कंसेप्ट एंड टू एक्सपेरिमेंट दिस कंसेप्ट, राइट? तो एक हो गया बैठकर, दूसरा है जब हम कर्म क्षेत्र पर वॉकिंग, जो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ले रहे हैं। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी को हम देखेंगे। जब मैं एक बार अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, उनको मैं फ्रिक्शन और ये सब सिखा रहा था, तो एक स्टूडेंट ने खड़े होकर एक बहुत सुंदर सा प्रश्न पूछा, सर कैन यू एक्सप्लेन हाउ डज एन एरोप्लेन रिमेन स्टेबल इन हाई स्काइज? नाउ दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिटिंग के बाद वॉकिंग एंड देन लेट अस एनालाइज स्टेबिलिटी एज फार एज फ्लाइंग इज कंसर्न। हम थोड़ा सा फ्लाइंग के फिजिक्स को या फ्लाइंग के मैकेनिक्स को या उसके विज्ञान को समझते हैं। सो फ्रेंड्स, द मोस्ट इंटरेस्टिंग इज ऑल अबाउट फ्लाइंग एंड ह्यूमन बींग्स हैव अप्लाइड देयर इंटेलिजेंस एंड दे हैव बीन एबल टू इन्वेंट एरोप्लेन्स। तो एरोप्लेन कैसे उड़ता है हम देखते हैं। वी हैव गॉट एरोफॉयल विंग्स जिसके द्वारा एयर जो होती है वो नीचे जाती है, जिसके कारण वो एरोप्लेन को एक लिफ्ट मिलता है। और जब वो लिफ्ट लेकर उठ तो जाती है और पूरा जो एरोप्लेन का जो ग्रेविटी होता है उसको एक इक्विलिब्रियम में सेट करता है। जो टर्बो इंजन होता है उसका एग्जॉस्ट पीछे की तरफ बहता है, जिसके कारण देयर इज अ थ्रस्ट फोर्स विच हेल्प्स टू मूव फॉरवर्ड एंड हियर द फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड एज अ ड्रैग थ्रू एयर रेजिस्टेंस एंड दैट्स हाउ इट्स इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो माई डियर फ्रेंड्स, एरोप्लेन इज अ मिरेकल, इट्स अ ग्रेट इन्वेंशन थ्रू द डोमेन्स ऑफ साइंस। सिटिंग, वॉकिंग जो नेचुरल प्रोसेस है उसके विज्ञान को समझते हुए मनुष्य ने कितना ब्यूटीफुल इन्वेंशन किया। और जस्ट इमेजिन कीजिए कितने सारे लोग एक साथ बड़े स्पीड से हम ट्रैवल कर सकते हैं। आप और हमने काफी बार जीवन में यात्रा की होगी और हमने अनुभव किया है कि बस टेक ऑफ के समय पर और लैंड करते समय थोड़ा सा है ना हलचल हम महसूस करते हैं, बट समटाइम्स द टेक ऑफ एंड द लैंडिंग कैन ऑल्सो बिकम वेरी वेरी स्मूथ। लेकिन वॉट वी हैव सीन इज वेन वी आर फ्लाइंग इन द हाई स्काईज अराउंड 30,000 feet, 35,000 feet, हम ये अनुभव करते हैं कि हम इतना स्पीड में ट्रेवल करते हैं लेकिन हमको लगता है कि वी आर एब्सोल्यूटली इन अ स्टिल पोजिशन। हम एकदम स्टेबल महसूस करते हैं। एंड बिलीव मी, उस समय पर ये एरोप्लेन जो है पृथ्वी को टच भी नहीं करता है। एंड दैट इज वॉट इज कॉल्ड एज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। माई डियर फ्रेंड्स, एंड दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन। पहले हमने महसूस किया आई एम द बींग, सेकेंड आई द बींग इज वेरी प्योर, पीसफुल एंड पावरफुल। थर्ड स्टेज, अगर मनुष्य एक एरोप्लेन को इतने सारे लोगों के साथ धरती से 35,000 feet उठा सकता है दोस्तों, तो उसी तरह हम अपने मन को भी इस शरीर के कॉन्शियसनेस, इस देह देह के धर्म और इस कारोबार से थोड़ा समय हम डिटैच हो और अपने मन को उस परमात्मा, उस परम ज्योति के साथ जोड़े। जब हम अपने मन को उस परमात्मा के साथ जोड़ते हैं तो ये सारी पॉजिटिव एनर्जी ऑफ स्टेबिलिटी मुझ आत्मा के अंदर आने लगती है और हम स्थिरता और स्थित्व प्रज्ञ को अनुभव करते हैं। परमात्मा के साथ मेडिटेशन कैसे करते हैं उसका पहले हम एक मंत्र सुनेंगे और एक मिनट का मेडिटेशन कर हम इस प्रोग्राम को अंत करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, इट वाज अ ग्रेट प्लेजर टू सी ऑल ऑफ यू। लेट्स लिसन टू दिस ब्यूटीफुल मंत्र एंड प्रैक्टिस मेडिटेशन फॉर 1 मिनट। थैंक यू। ओम शांति। नमस्कार।
तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यच मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामेवैशस्य संशयम्।
ओम शांति। चलिए कुछ क्षणों के लिए हम एक सुंदर यात्रा पर निकलते हैं। मैं अपने आप से बहुत प्यार से बात करता हूं। मेरे चारों ओर बहुत चुनौतियां हैं जो लहरों के स्वरूप में हैं और मैं इन लहरों के बीच स्थित हूं। अब मैं अपने सत्य स्वरूप को महसूस करता हूं कि मैं एक चैतन्य ऊर्जा हूं। मैं आत्मा इस शरीर से अलग शांत शीतल और शक्तिशाली हूं। मेरा मन मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। मेरे मन में सकारात्मक संकल्प चल रहे हैं जिससे मेरी आंतरिक शक्ति बढ़ रही है और जीवन की चुनौतियों को मैं पार कर पाऊंगा। मेरा दृष्टिकोण बहुत शुद्ध स्वच्छ और पवित्र बनती जा रही है। मैं अपने मन के द्वारा कुछ क्षणों के लिए इस दुनिया से ऊपर ले जाता हूं और उस परमपिता परमात्मा को बहुत प्यार से याद करता हूं। मैं महसूस करता हूं कि उनके पवित्र किरणों के सानिध्य में मैं सुरक्षित हूं। मैं बहुत हल्का और रिलैक्स्ड हो गया हूं। अपनी जीवन रूपी यात्रा को मैं बहुत स्नेह प्यार और खुशी से जीने के लिए सक्षम हूं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे भाई और बहनों, आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, डायबिटीज। आज भारतवर्ष में घर घर में ये बीमारी फैल गई है। हम सभी को पता है ये एक बहुत बड़ी महामारी बन गई है। ऐसा घर नहीं होगा जिनके घर में ये बीमारी नहीं होगी। आज से अगर 40-50 साल पहले की बात अगर सोचेंगे, ये बीमारी इतनी नहीं थी। डायबिटीज कोई नई बीमारी नहीं है, बहुत प्राचीन बीमारी है। आज से हजारों साल पहले हमारे आयुर्वेद में भी इस बीमारी के बारे में वर्णन है। मधुमेह नाम से भारतवर्ष में हम जानते थे। परंतु उन दिनों में कोई लाखों में किसी बिरला को यह बीमारी होती थी। आज इस बीमारी के बारे में हम चर्चा करने आए हैं क्योंकि ये बीमारी अभी घर घर में फैल गई है और जितनी तेज गति से ये बढ़ती जा रही है पिछले 10-20 साल के अंदर ही इतनी संख्या में बढ़ गई है, खाली भारत नहीं सारे विश्व में, वास्तव में एक चिंता का विषय है। COVID-19 कोरोना वायरस के कारण सारे विश्व में लगभग 10-11 लाख लोगों का मौत हुआ है, परंतु आपको पता है कि सिर्फ भारत में ही हर साल 10 लाख लोगों का मौत हो रहा है डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन से, और सारे विश्व में तो आधे करोड़ लोगों का। सोचो तो सही कितनी गंभीर बीमारी है। आज कोरोना वायरस के लिए बहुत चिंता है, बहुत भय है, लोगों को डर है, परंतु डायबिटीज एक साइलेंट किलर है। वो एक धीमा जहर की तरह धीरे 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 आदमी को खोखला कर देता है और मेजोरिटी लोगों को तो हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, हार्ट अटैक होके मर जाते हैं। लेकिन लोग सोचते हैं उसको हार्ट अटैक होके वो मर गया, परंतु वो डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन था वो कोई नहीं सोचता है। तो डायबिटीज वास्तव में कैसी बीमारी है, क्या बीमारी है? डायबिटीज एक शुगर की बीमारी है। हमारे शरीर के अंदर हम जो भी कुछ खाते हैं ये सब शुगर में रूपांतरित होता है और ये शुगर हमारे खून में सर्कुलेट होके एक एक कोशिका के अंदर जाकर हमें शक्ति प्रदान करता है। हम जो भी खाते हैं, चाहे हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, दालें खाते हैं, ये सब हमारे शरीर, इसके अंदर शुगर है और शरीर में जाके ये बहुत डाइजेशन होने के बाद, सिंप्लीफाई होने के बाद, ये शुगर हमारे रक्त में संचालन होकर एक एक कोशिका के अंदर जाकर हमें शक्ति प्रदान करता है। सारा दिन हम चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, बात करते हैं, इसमें शक्ति चाहिए क्योंकि ये शरीर एक गाड़ी है और ये गाड़ी को चलाने के लिए शक्ति कहां से मिलेगी? हम जो भी कुछ खाते हैं ये सब शुगर में रूपांतरित होकर हमें शक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन जैसे किसी गाड़ी में जैसे तेल की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए या एकदम कम हो जाए तो गाड़ी चलेगी नहीं, बहुत तेल कम हो जाए, रिजर्व से भी कम, तो गाड़ी बंद हो जाएगी। बहुत ज्यादा तेज हो जाए तो तेल अगर मात्रा ज्यादा हो के ओवरफ्लो होने लगे तो भी गड़बड़ है। इसी प्रकार हमारे शरीर में जब एकदम शुगर की मात्रा कम हो जाती है तो आदमी बेहोश हो सकता है। ब्रेन को कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली शुगर चाहिए। अगर ब्रेन को थोड़े समय के लिए भी, अगर कुछ सेकंड के लिए भी अगर शुगर नहीं मिले तो हम बेहोश हो जाएंगे। इसी प्रकार शुगर की मात्रा भी जब ज्यादा हो जाती है हमारे खून में, हमारे शरीर में, तो उसको डायबिटीज कहा जाता है। क्यों होता है ऐसा? हमारे शरीर में एक हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन। वो हमारे पेट के पृष्ठभाग में एक ग्रंथि है जिसका नाम पैनक्रियास ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, और उस ग्रंथि से कुछ कोशिकाएं हैं जिसका नाम है बीटा कोशिका, बीटा सेल्स। उस बीटा सेल से इंसुलिन क्षरण होता है और ये हमारे शुगर को हमारे खून में कंट्रोल करने में वो मदद करता है। सारा दिन हम खाएं ना खाएं, हमारी शुगर की मात्रा बिल्कुल एकदम कंट्रोल में रहना जरूरी है। तो इंसुलिन एक जैसे वोल्टेज स्टेबिलाइजर, जैसे घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज फ्लक्चुएट हो तो जो बहुत इंपॉर्टेंट मशीनरी हैं वो खराब हो सकते हैं, इसलिए हम वोल्टेज स्टेबिलाइजर रखते हैं। ठीक इसी तरह इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे शरीर के अंदर, जो शुगर हम सारा दिन कंटिन्यूसली तो खाते नहीं, बीच बीच में खाते रहते हैं, तो ये शुगर की मात्रा को एकदम बढ़ने नहीं देता है और एकदम लो होने भी नहीं देता है, मेंटेन करके रखता है। किसी भी कारण से अगर इंसुलिन का क्षरण हमारे शरीर से सफिशियंट, जितना होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है, या इंसुलिन किसी भी कारण से काम नहीं कर पाता है, उदाहरण के रूप में कोई ओवरवेट हो गया, मोटे हो गया, तो उसके चर्बी वो इंसुलिन को काम करने नहीं देता है। बॉडी में इन्फेक्शन हो गया तो भी इंसुलिन काम नहीं करेगा। कोई एकदम बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है, तो इंसुलिन काम नहीं करता है। तो अनेक सारे कारण ऐसे हैं जो इंसुलिन होते हुए भी कारण काम नहीं करता है। तो या तो इंसुलिन ठीक से नहीं बन पाता है, या तो इंसुलिन काम नहीं करता है, तो हमें डायबिटीज हो जाता है। आज हमारे भारतवर्ष में ही 70 मिलियन से ज्यादा लोगों को डायबिटीज हो गया है, 7 करोड़, और सारी वर्ल्ड में तो 400 मिलियन से भी ज्यादा, 40-45 करोड़ लोगों को डायबिटीज हो गया है। तो जिस गति से ये बीमारी बढ़ती जा रही है, दिन दुगुनी रात चौगुनी, आप सोच भी नहीं सकते हो। हर साल इतनी संख्या बढ़ती जा रही है, और इससे जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है, मौत बढ़ता जा रहा है, वास्तव में एक चिंता का विषय है। हर 20 सेकेंड में किसी न किसी एक डायबिटीज पेशेंट का पैर काट दिया जा रहा है, और न्यूरोपैथी होकर या वास्कुलोपैथी होकर गैंग्रीन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, पैर कट जाता है। हर 20 सेकेंड, आधे मिनट भी नहीं है उससे कम समय में, सोचो तो सही। हर 6 सेकेंड में कहीं ना कहीं किसी न किसी हॉस्पिटल में एक डायबिटीज पेशेंट का मौत हो रहा है, हर 6 सेकेंड में। तो कितनी गंभीर समस्या है सोचिए। लेकिन इसका उपचार क्या है, ये तो आप सभी जानते भी होंगे, लेकिन इसका उपचार क्या है? आज जितनी दवाइयां उपलब्ध है मार्केट में हर पाथी की, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, हर पाथी की हमारे पास कितनी सारी, ढेर सारी दवाइयां हैं। लेकिन आज अगर 30-35 साल पहले चले जाइए, देखना, डायबिटीज के लिए बहुत नाम मात्र थोड़ी सी ही दवाई थी। मैं जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, 3 दवाइयां ही थी। 1970s-80s की बात मैं बताऊं, उन दिनों में 3 दवाइयां थी, DBITD, मेटफॉर्मिन, डायमिल, दैट्स ऑल। लेकिन उन दिनों में डायबिटीज की संख्या बहुत कम थी, बहुत कम थी, कोई 100 में से 1 भी नहीं होगा। हमारे प्रोफेसर्स कहते थे कि डायबिटीज तो बुढ़ापा की बीमारी है, बहुत खाने पीने वाले, बहुत अमीर लोगों को ये बीमारी होती है, ये विदेशी बीमारी है। और आज देखिए तो सही, हर दूसरा, तीसरा, चौथा व्यक्ति को डायबिटीज है। और आजकल तो हॉस्पिटल में हम देखते हैं एकदम गरीब मजदूर लोग भी, उनको भी डायबिटीज है, उनको भी डायबिटीज है। आज धनी हो या निर्धन हो, अमीर हो या गरीब हो, किसी को भी डायबिटीज है। तो और दवाइयां आज कितनी ढेर सारी हो गई है, अगर दवाइयों से अगर ये बीमारी ठीक होती तो कब से ही बीमारी ठीक हो जाती। तो सिर्फ दवाई से मेरे भाई और बहनों, ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। हम सभी डॉक्टर्स, सभी साइंटिस्ट भी रियलाइज कर चुके हैं। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन WHO का कहना है, लोगों को एजुकेट करो। आज से 10 साल से भी ज्यादा हो गया कह रहे हैं कि लोगों को एजुकेट, एजुकेट एंड एजुकेट। लोगों को सुदबुद नहीं है, क्या भी खा जा रहे हैं। आजकल सभी सिडेंटरी हो गए हैं, बिल्कुल सबके पास गाड़ी, मोटरें, मोबाइल सबके पास, और दुनिया भर की चिंता। तो बहुत सारे कारणों से डायबिटीज होती है। डायबिटीज इज ए मल्टीफैक्टोरियल डिजॉर्डर, कोई एक कारण हो तो उसकी एक कारण को निवारण कर दिया तो बीमारी ठीक हो गई। लेकिन डायबिटीज वास्तव में एक मल्टीफैक्टोरियल डिजॉर्डर है, इट इज नॉट ए डिजीज, इट इज ए डिजॉर्डर, इट इन्वाइट सो मेनी डिजीज। एक बार डायबिटीज किसी को हो गया तो उसको हार्ट की बीमारी, उसको हाई ब्लड प्रेशर, उसके कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उसको धीरे 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 कितनी सारी बीमारियां और कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम इसको डिजॉर्डर कहते हैं, इट इज ए मदर ऑफ मेनी डिजीज। और बहुत सारे कारण से, कोई बहुत मोटे हो जाते हैं तो उनको डायबिटीज हो रहा है, कोई पतले दुबले लोगों को भी होता है, उनका दूसरा कारण, फिर उनको टेंशन है तो उनको डायबिटीज हो रहा है। घर में अचानक किसी को, किसी का मौत हो गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, कि बहुत फाइनेंशियल लॉस हो गया, टेंशन हुआ, डायबिटीज हो रहा है। और आजकल टाइप 1 डायबिटीज भी, कितने चारों तरफ छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे, और आजकल बाजार में जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब खा के भी छोटे छोटे बच्चों को भी टाइप 2 डायबिटीज। हम सभी जानते हैं डायबिटीज कितने प्रकार के हैं। टाइप 1 डायबिटीज छोटे छोटे बच्चों को होता है, लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी टाइप 2 शुरू हो गया है, क्योंकि जंक फूड, फास्ट फूड खा के मोटे मोटे। और बड़ों को भी टाइप 1 हो रहा है, हम लाडा कहते हैं उसको। इस प्रकार गर्भवती महिलाओं को भी होती है। तो आज देख रहे हैं डायबिटीज घर घर में, जिधर देखो, जहां देखो। लेकिन इसका उपचार क्या है, मैं आपको बता रहा था कि एक कोई, आजकल आप सुनेंगे, आजकल तो सबके पास गूगल यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी है, उसमें सब पढ़ रहे हैं। आप यूट्यूब सर्च करो, देखना, डायबिटीज खत्म, एक दिन में डायबिटीज खत्म, आप सिर्फ खाली फल खाओ डायबिटीज खत्म हो जाएगा, आप ये पाउडर खा लो, ये काढ़ा पी लो डायबिटीज खत्म। वास्तव में ऐसा नहीं होता है। डायबिटीज का अनेक कारण है मेरे भाई और बहनों, ऐसे गलत फहमी में मत जाना। वो सारे एक्चुअली हाफ नॉलेज है और इनएडिक्वेट नॉलेज के कारण लोग कुछ कुछ भी, उसमें तो फ्रीडम है पूरा, जो कोई भी कुछ भी पोस्ट कर देता है। ये सब बातों पढ़ के अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए। मैं कितने लोगों को देखा हूं गलत विधि अपनाते हुए फिर कॉम्प्लिकेशंस होके हॉस्पिटल में आते हैं। तो देखिए, डायबिटीज का कारण अनेक है, इसलिए उसको सभी रीति से हमको इसका उपचार करना पड़ेगा। इसलिए और डायबिटीज में तनाव बहुत एक इंपॉर्टेंट कारण है। देखिए, किसी को स्ट्रेस हो जाता है तो डायबिटीज होता है, इसलिए कहते हैं स्ट्रेस इज डायबिटोजेनिक। आज अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन कहता है 60% ऑफ मॉडर्न डिजीजेस आर ड्यू टू स्ट्रेस। आजकल जितने भी बीमारियां देख रहे हैं, चाहे डायबिटीज, चाहे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, स्ट्रोक, मेंटल इलनेसेस, ये सारी बीमारियों का जड़ वास्तव में देख रहे हो स्ट्रेस है। और जिसको डायबिटीज स्ट्रेस हो गया डायबिटीज होता है, और शुरुआत में तो लोग काढ़ा पियेंगे, कुछ पाउडर खाएंगे, जो जैसा बोलेगा वो करेंगे, लेकिन डॉक्टर की बात नहीं सुनेंगे। और अंत में जब कॉम्प्लिकेशन हो जाता है 2-4 साल 5 साल में, शुगर अप डाउन होकर फिर जब कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, फिर जिंदगी भर उनको डायबिटीज होता है, स्ट्रेस होता है, और कॉम्प्लिकेशन के कारण सारे परिवार को स्ट्रेस होता है। तो सोचिए तो सही। तो इसलिए स्ट्रेस को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, ये बीमारी कैसे ठीक होगी? तो स्ट्रेस का उपचार किसके पास है? है किसके पास? अब देखिए, डॉक्टर ही खुद स्ट्रेसफुल हैं तो आपको कैसे देंगे दवाई इसकी? स्ट्रेस तो वास्तव में ये एक मेंटल कंडीशन है, इट इज अ स्टेट ऑफ मेंटल डिसहार्मनी। आपके मन में जब स्ट्रेस होता है, क्या क्या सोचते रहते हो? अरे बाप रे, ऐसा हो गया, क्या होगा, क्या करूं अभी, कैसे होगा, अनेक नेगेटिव सोच, वेस्ट थॉट्स चलता रहता है। तो आप जब तक उस थॉट्स को चेंज करके पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट नहीं करते हैं, आपका स्ट्रेस कैसे खत्म होगा? तो इसलिए मेडिटेशन एक ही विधि है। मेडिटेशन इज एन आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो मेडिटेशन करेंगे तो ही स्ट्रेस को आप खत्म कर सकते हो, और कोई दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। इट इज अ सियोरेस्ट मेडिकेशन, मैं बता सकता हूं आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस। तो डायबिटीज का संपूर्ण उपचार, जिसको हम कहते हैं होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज, उसमें न सिर्फ शरीर को, शारीरिक कॉम्प्लिकेशंस के लिए आपको दवाई लेने है तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके शरीर में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है सफिशियंट अमाउंट, तो आप कितना भी कुछ कर लो नहीं हो सकता है, कितना भी भाग दौड़ करो। हाँ, शुरू में कोई अगर बहुत ओवरवेट है, वो एक्सरसाइज करता है, खान पान परहेज करता है, तो उसका 10 किलो खाली वेट कम हो जाता है, तो मैं 100% कहूंगा उसका शुगर नॉर्मल हो जाएगा। चाहे वो काढ़ा पी के, चाहे वो नींबू पानी पी के, या फलाहार करके अनाज छोड़ देते हैं लोग, कई लोग। लेकिन आप कुछ भी उल्टा पुल्टा करोगे, लंबा समय वो नहीं चल सकता है, बॉडी में बहुत प्रकार का फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। एक नॉर्मल जीवन जीना चाहिए। लोग क्या करते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, फिर जाके ऐसा विधि अपनाना पड़ता है उनको। हम एक नॉर्मल जीवन जिए और हमारे बॉडी वेट को भी मेंटेन करें तो बीमारियां होगी नहीं। तो मैं बता रहा था कि लोग खाली वेट 10 किलो किसी भी विधि से अगर कम कर देते हैं, जो ओवरवेट हैं, उनका डायबिटीज ठीक हो जाता है। तो खाली खान पान से, या खाली एक्सरसाइज से, खाली दवाई से नहीं हो सकता है, और उसका मानसिक स्वास्थ्य को भी हमें देखना पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच टू डायबिटीज मैनेजमेंट, जिसमें तन का भी और मन का भी दोनों का इलाज किया जाता है। हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जो पिछले लगभग 29 साल कल पूरा हो रहा है सेवा, तो लगभग 30 साल से जो हम सेवा कर रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल में एक होलिस्टिक डायबिटीज सेंटर है, जहां कोई भी पेशेंट आते हैं तो उनको हम होलिस्टिक रीति से जो इलाज करते हैं, उसका उपचार क्या है मैं आपको सुनाता हूं। उसका रिजल्ट एकदम वंडरफुल है। होलिस्टिक अप्रोच माना, डायबिटीज में जो शब्द है DIABETES, ये 8 बातें, क्या क्या चीजें हैं, मैं इसमें ये संपूर्ण उपचार समाहित है, मैं आपको सुना देता हूं। डी स्टैंड्स फॉर डाइट एंड डी एडिक्शन, डाइट एंड डी एडिक्शन। आई स्टैंड्स फॉर इंजेक्टेबल एंड ओरल ड्रग्स। ए स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस ऑफ इट्स सीरियसनेस। बी स्टैंड्स फॉर बिहेवियरल थेरापी एंड मोटिवेशन। एंड ई स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी. टी स्टैंड्स फॉर टाइमली टेस्ट्स एंड मॉनिटरिंग. अगेन ई स्टैंड्स फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट. एंड एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेस फ्री लिविंग एंड कीपिंग ए बैलेंस इन लाइफ. ये आठ बातों को ध्यान देकर अगर डायबिटीज का हम इलाज करते हैं तो किसी का डायबिटीज जड़ से भी खत्म हो सकता है, रिवर्ट भी हो सकता है, कुछ नहीं है तो उसका शुगर कंट्रोल भी हो सकता है. एक बात आप देखिए, ध्यान से सुनिए. डायबिटीज बता रहा था, इट इज ए लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर. ये हमारे मां बाप को भी है तो भी हमें हो जाती है, तो इट इज अ जेनेटिक डिजॉर्डर भी. उनके जीन से हमारे पास ये बीमारी आ जाती है. लेकिन आजकल जो घर घर में फैल रही है, आजकल मां बाप को नहीं होते हुए भी बच्चों को हो रहा है, तो किसको फिर हम दोषी कहेंगे? हु इज रेस्पॉन्सिबल? तो हम देखा गया है कि हम अपना लाइफस्टाइल को जो पिछले एक जनरेशन के अंदर जो परिवर्तन हो गया, भारतवर्ष में खास सारी दुनिया में चेंज हुआ है. लोग जितना मेहनत करते थे पहले कर नहीं रहे. जो खाना पीना आजकल देखिए, जंक फूड फास्ट फूड चारों तरफ सारा गंद फैला हुआ है, लोग वही खा रहे हैं. जो नहीं खाना चाहिए खा रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए कर रहे हैं, और सभी पूरा आलसू हो गए हैं, बैठे बैठे खा रहे हैं. बिना सीजन के कुछ भी मिलता है मार्केट से लाके खा रहे हैं, ओवरवेट होते जा रहे हैं. दुनिया भर की टेंशन परिस्थिति बढ़ रही है, समस्याएं बढ़ रही है, और दुनिया में अनेक प्रकार के विकार के प्रादुर्भाव आप देख रहे हो, कैसे बीमारियां देख रहे हो, कैसे अनेक समस्या के घेरे में लोग टेंशन में रह रहे हैं. तो जब तक हम ये सारी बातों को नहीं देखेंगे कैसे होगा? तो सबसे पहले डाइट. तो डाइट को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, चाहे कितना भी कुछ कर ले कोई, तो उसका शुगर कभी कंट्रोल होगा नहीं. तो शुरू में अगर किसी को अभी अभी डायबिटीज हुआ है, उसका खान पान ठीक नहीं है, वो ओवरवेट है, ये सब बातों को लाइफस्टाइल को जब चेंज कर देते हैं, पूरा नॉर्मल हो जाता है, बिना दवाई बिल्कुल ठीक हो जाता है. लेकिन किसी को बहुत लंबे समय से डायबिटीज है और उसको कॉम्प्लिकेशंस हो गया है, उसकी नेफ्रोपैथी हो गई है, किडनी खराब हो गया है, आंखों पर असर हो गया है, ऐसे समय पर वो कहेगा मैं दवाई नहीं खाऊंगा, मुझे कुछ नुस्खा बताओ जो कि एकदम ठीक हो जाऊंगा, नहीं हो सकता है. नहीं, उसको राइट मेडिकेशन लेना ही पड़ेगा. इसलिए ऐसा नहीं कि हर कोई डायबिटीज पूरा सब पूरा जड़ से खत्म हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, नहीं. किसी का वो अपना लाइफस्टाइल को सुधार देता है, टेंशन छोड़ देता है, तो नॉर्मल हो जाता है. फिर गड़बड़ करेगा, फिर आ जाएगा, क्योंकि हमारे खून में वो बीमारी है. और किसी का अगर लंबे समय से है तो नहीं रिवर्ट होता है, उसको सही दवाई लेनी पड़ेगी. जो भी हो, डायबिटीज इज ए लाइफ लॉन्ग डिजीज एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज. तो लाइफस्टाइल में हमारे खान पान को ठीक करें. खान पान बिल्कुल बाजार का बिल्कुल नहीं खाना है. घर में ही दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ. सिंपल मैं कहूंगा, रोटी सब्जी दाल चावल कोई खाए तो उसको कोई बीमारी होगी ही नहीं. हमारे भारतवर्ष में हमारे थाली में 75% तक कार्बोहाइड्रेट्स हम खा रहे हैं. यही दिस इज द कॉज, दिस इज द कॉल्प्रिट. आइडियली 50% से कम कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए. जो भी कैलोरी हमारी मिलती है, ऊर्जा हमें मिलते हैं भोजन से, वो ऊर्जा का 50% कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए. 25% प्रोटीन जो दालें हैं इससे आनी चाहिए. दूध पीते हैं, दालें खाते हैं, तो इससे आनी चाहिए. और 25% हम जो तेल घी आदि खाते हैं उससे आनी चाहिए. तो ये बैलेंस नहीं है. हमारे भारतीय बहुत सारे भाई बहनों का भोजन का बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है. इसको ठीक करना पड़ेगा. बाजार का कुछ भी जंक फूड फास्ट फूड नहीं खाएं. कम कम खाएं, पेट भर के कभी नहीं खाएं, जल्दी जल्दी कभी नहीं खाएं, धीरे धीरे स्लोली खाएं, चबा के अच्छी तरह से खाएं, लंबे समय तक भूखा नहीं रहें और ओवर ईटिंग नहीं करें. ये बातों को ध्यान देना है. और खाने में हमारे 50%, हमारे थाली में 50% से ज्यादा तो सब्जियां होनी चाहिए. फल जितना इंक्लूड कर सकते हैं, सब्जियां जितने इंक्लूड कर सकते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वो करेंगे, डाइट में चेंज करेंगे. और साथ साथ डी एडिक्शन. अगर कोई तंबाकू सिगरेट शराब लेता है तो वो 100% उसका मौत होगा. इसलिए हम सभी पेशेंट को एजुकेट करने की आवश्यकता है. भाई ये तुमको खाना है, खाली हम दवाई लिख देते हैं, इससे दवाई से ठीक नहीं होगी. हमको बताना पड़ेगा क्या खाएं क्या नहीं, और उनका स्पाउस को बताना पड़ेगा. कोई मेल पेशेंट आया है, उसको कितना भी काउंसलिंग करो, वो घर में जाके जो घर में मिलेगा वही खाएगा. इसलिए डायबिटीज इज ए फैमिली डिजीज, तो उनके परिवार वर्ग को बुला के भी उनके फैमिली मेंबर को जो खाना बनाते हैं खास, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनके बच्चों को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप जो खाते हैं बच्चे वही खाते हैं, माँ बाप को जो बीमारी बच्चों को भी वो बीमारी होगी, तो ये फैमिली को पूरा सुधारना पड़ेगा। और साथ साथ डी एडिक्शन, तंबाकू सिगरेट शराब से भी उनको बचाना पड़ेगा, नहीं तो हजार कॉम्प्लिकेशन होगा, हार्ट अटैक होगा, कैंसर होगा, सब प्रकार का डायबिटीज। अगर डायबिटीज पेशेंट में कोई अगर ये सब तंबाकू सिगरेट शराब का आदती है तो 100% उसको कॉम्प्लिकेशन होगा। देन आई, आई स्टैंड्स फॉर इंजेक्टेबल एंड ओरल ड्रग्स। अगर कोई शुरू शुरू में बताया अगर किसी को डायबिटीज नहीं है तो बिना उसका लाइफस्टाइल चेंज बहुत गड़बड़ है तो उसको लाइफस्टाइल को सुधार कर दीजिए, उसको डायबिटीज होगा ही नहीं। तो डायबिटीज इज ए टोटली प्रिवेंटेबल डिजॉर्डर, जिसको नहीं है होगा ही नहीं, जिसको हो चुका है शुरुआत में है तो पूरा रिवर्ट हो सकता है, अगर लंबा समय भी है तो भी कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं या उसको मौत से भी बचा सकते हैं। तो जिसका लाइफस्टाइल गड़बड़ है एजुकेट करके उनको, प्री डायबिटीज भी है तो नॉर्मल हो जाएगा, और जिसको डायबिटीज हो चुका है लंबे समय से है, उसका कितना भी वो एक्सरसाइज करे, खान पान परहेज करे, अगर उसका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है उसको राइट मेडिकेशन देने की आवश्यकता है। मैं राइट मेडिकेशन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज बहुत सारी दवाइयां उपलब्ध है। एक डायबिटीज पेशेंट का किडनी पर असर हो गया है, हमें कौन सी दवाई देना है नहीं देना है हमें समझने की आवश्यकता है। किसी को हार्ट में असर हो गया है, किसी को नेफ्रोपैथी हो गई, किसी को और क्या प्रॉब्लम है, तो हमें समझना पड़ेगा। कुछ भी दवाई दे दें, जैसे बुखार होता है तो पैरासिटामोल खा लो तो बुखार उतर जाता है, डायबिटीज ऐसा नहीं है, हर एक पेशेंट डिफरेंट है, हमें समझना पड़ेगा। राइट मेडिकेशन नहीं देंगे, चाहे टेबलेट हो चाहे इंजेक्शन हो, उसका ठीक होगा ही नहीं, फिर कॉम्प्लिकेशन होगा। देन ए फॉर अवेयरनेस ऑफ इट्स सीरियसनेस। डायबिटीज कितना खतरा बीमारी है लोगों को पता नहीं, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा तो चलता है, हमेशा चलता है, हमेशा मेरा 300-400 रहता है, वो चलता नहीं है, थोड़े दिन के बाद कॉम्प्लिकेशंस लेके आता है, थोड़े दिन के बाद गाड़ी आईसीयू जाती है, वहां डॉक्टर भी कहेंगे आईसीयू, भगवान भी कहेंगे आईसीयू बेटा इन आईसीयू, तो कभी ठीक नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है, देखो फिर अंत में कितना कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है। तो डायबिटीज शुरुआत से अगर कोई अगर उसका ठीक से कंट्रोल करके रखता है तो उसको कॉम्प्लिकेशंस नहीं भी होगा। तो इसलिए अवेयरनेस ऑफ इट सीरियसनेस, डायबिटीज में कितने लोग अंधे हो जाते हैं, कितने किडनी खराब हो रहे हैं, कितने लोगों के पैर कट रहा है, ये सब लोगों को एजुकेट करके बताना पड़ेगा, तो ही वो जागरूक होगा और फिर डायबिटीज का देखभाल खुद का खुद करेगा। देन बी स्टैंड्स फॉर बिहेवियरल थेरेपी एंड मोटिवेशन। डायबिटीज इज ए बिहेवियरल डिजॉर्डर। डायबिटीज हो जाता है, उनकी स्ट्रेस हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स चलता है, फिर दुखी होके कोई स्मोकिंग करता है, कोई अल्कोहल लेता है, कोई ड्रग्स एडिक्ट हो जाता है, कोई फिर दवाई छोड़ देता है, कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, उनके बिहेवियर में काफी बदलाव हम देखते हैं। तो जब तक उसका बिहेवियर को हम चेंज नहीं करते हैं तो डायबिटीज भी ठीक नहीं हो सकता है। सो बिहेवियरल थेरेपी एंड मोटिवेशन, क्योंकि सारा जीवन भर की बात है, दो चार दिन की बात तो है नहीं, रोज एक्सरसाइज करने के लिए इट नीड्स स्ट्रांग मोटिवेशन। खान पान परहेज करके रेगुलर चलने, डिसिप्लिन लाइफ में चलने के लिए मोटिवेशन चाहिए, तो लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा। और साथ में ई फॉर एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी। आज लोग एक्सरसाइज करते ही नहीं है, आजकल अवेयरनेस भी बढ़ी है, लोगों बहुत लोग कर भी रहे हैं, परंतु खास डायबिटीज पेशेंट में जब देखता हूं, पेशेंट को पूछता हूं, अधिकतर लोग करते नहीं है। आज हमारे लाइफस्टाइल जैसे सेडेंटरी हो गया है, सबको एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो कभी भी हमारा शुगर कंट्रोल नहीं होगा। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जो भी खाते हैं वो शुगर यूज होता है मसल्स के द्वारा, तो इसलिए आज सबको एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। पहले जमाने में लोग बहुत मेहनती थे, खेती बाड़ी करते थे, भाग दौड़ करके कहीं भी जाते थे, आजकल ये सब तो है नहीं, सेडेंटरी है। तो आधा घंटा पौना घंटा रोज एक्सरसाइज करें, जिसमें एरोबिक एनरोबिक दोनों शामिल हो, दोनों की आवश्यकता है। तो दोनों अगर करेंगे तो जाके हमारा ठीक रहेगा, बॉडी एकदम फिट रहेंगे, आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करेंगे। और लोग आधा घंटा एक्सरसाइज तो करते हैं फिर सारा दिन फिर बैठे रहते हैं, वो भी नहीं, सारा दिन भी कर्मठ जीवन जिए, सारा दिन भी हम घर का काम करें, ऑफिस का काम करें, कुछ ना कुछ करें, कर्मठ जीवन जिए। तो डी आई ए बी ई, टी स्टैंड्स फॉर टाइमली टेस्ट एंड मॉनिटरिंग। डायबिटीज में हमें क्या क्या चेक करना है वो भी लोगों को पता ही नहीं है, बहुत लोग जानते नहीं है। डायबिटीज में खाली सुगर ही देखते रहते हैं अनेक लोग, और वो भी रैंडम चेक करेंगे, खाली रैंडम चेक करेंगे। रैंडम चेक करना माना उसी समय जो ब्लड शुगर है वो बताता है, लेकिन सारा दिन में आप कितने बार खाते हो, क्या क्या खाते हो, कितना अप डाउन होता है, कैसे पता चलेगा आपको? तो हर एक डायबिटीज पेशेंट को कम से कम 4 बार दिन में तो चेक करना ही पड़ेगा शुगर। आपके पास ग्लूकोमीटर होगा, ग्लूकोमीटर द्वारा आप सवेरे फास्टिंग बिना चाय पिए उठते ही आप शुगर चेक करो, उसको फास्टिंग शुगर कहते हैं। वो 100 के आसपास रहना चाहिए। नॉर्मल एक व्यक्ति का शुगर 100 से ऊपर नहीं जाता है, 100 से नीचे रहता है, तो 100 के आसपास आपका रहना चाहिए। इसी प्रकार खाने के बाद कभी भी चेक करोगे, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद, खाना पूरा हो गया आप गोली खाओ, जो भी अगर आप डॉक्टर देते हैं इंजेक्शन लेना है लो, 10 मिनट के बाद जितने समय बताते हैं, जैसे इंजेक्शन इंसुलिन, कई इंसुलिन तो आधा घंटा पहले लगाना पड़ता है, लेकिन टेबलेट 10 मिनट पहले से भी चलेगा। टेबलेट खाने के बाद आप 10 मिनट के बाद आप नाश्ता करके या भोजन खा के फिर घड़ी देखकर, नाश्ता पूरा हो गया 1-1.5 घंटे के बीच में चेक करना। बहुत ज्यादा लंबा समय देर करोगे 2 घंटे के बाद लोग चेक करते हैं तो फिर तो नॉर्मल दिखाएगा, 1-1.5 घंटे के अंदर बहुत ज्यादा सूट करता है, तो उस समय चेक करना, नाश्ते के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद, और तीनों टाइम 150 के आसपास रहना चाहिए। एक नॉर्मल व्यक्ति का 140 के अंदर ही रहता है, तो आपको भी नॉर्मल नियर नॉर्मल मेंटेन करना है, इसलिए 150 के आसपास, 160 के 130 रहे तो ठीक है, आसपास रहेगा तो चलेगा। तो 4 बार कम से कम शुगर चेक करें और ब्लड प्रेशर भी चेक करें। डायबिटीज पेशेंट्स को, आधे लोगों को तो ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, तो आपका ब्लड प्रेशर भी चेक करते रहें। महीने में एक दिन कम से कम चेक करें बीपी और शुगर, एक दिन चेक करो लेकिन 4 बार शुगर चेक करो। और 6 महीने में कम से कम आपका कोलेस्ट्रॉल कैसा है, आपका लिवर फंक्शन कैसा है, आपका किडनी फंक्शन कैसा है, आपका यूरिन भी चेक कीजिएगा, उसमें प्रोटीन तो लीक नहीं हो रहा है, शुगर तो लीक नहीं हो रहा है। आपके साल में तो एक बार कंप्लीट चेकअप करा लेना चाहिए, आपके एडी से लेकर चोटी तक, आपके आंखों के पर्दे का चेकअप कराइए, दांतों का चेकअप कराइए, क्योंकि दांत में भी प्रॉब्लम हो जाता है, दांत में इन्फेक्शन होगा तो शुगर को भी कंट्रोल नहीं होगा। और इसी प्रकार आपका हार्ट का चेकअप कराइए, ECG कराइए, और लीवर किडनी बताया, यूरिक एसिड कराइए, कोलेस्ट्रॉल कराइए, और यूरिन चेक कराइए, थायराइड चेक कराइए, पैर का चेकअप कराइए, तो साल में एक बार कंप्लीट मॉनिटरिंग, ठीक है। टाइमली टेस्टिंग, समय अनुसार चेक कराते रहिए, जैसे गाड़ी की सर्विसिंग कराई जाती है ऐसे डायबिटीज में भी पूरा बॉडी, पूरा होल बॉडी पर असर होता है, इसलिए पूरा चेक करना जरूरी है। अगेन ई स्टैंड्स फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। हमारे हॉस्पिटल में यूजुअली हम क्यूरेटिव अप्रोच से ट्रीटमेंट करते हैं, कोई भी आया पूछा क्या प्रॉब्लम है, 1 मिनट में दवाई लिख दे के जाओ भाई नेक्स्ट पेशेंट, ऐसे नहीं चलेगा। कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज इजियर देन क्योर, वाइजर देन क्योर, चीपर देन क्योर। तो इसलिए हम कोई भी पेशेंट आए तो डायबिटीज पेशेंट को काउंसलिंग करना पड़ता है, उनको एजुकेट करना पड़ता है, एम्पावर करना पड़ता है। और एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेस फ्री लिविंग एंड कीपिंग ए बैलेंस इन लाइफ। जीवन में तनाव मुक्त कैसे रहें, जब तक हम उनको नहीं सिखाते हैं उसका डायबिटीज कभी कंट्रोल होगा नहीं, अप डाउन होता ही रहेगा। और जीवन में बैलेंस कैसे रखें वो भी हमें सिखाना पड़ेगा, क्योंकि जिसका जीवन में बैलेंस नहीं है उनको ही तो स्ट्रेस होता है। तो व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, प्रोफेशनल जीवन, ये सारी बातों का कैसे बैलेंस रखें वो भी हमें सिखाना पड़ेगा। तो ये 8 बातें जो बताया, DIABETES, डी फॉर डाइट एंटी एडिक्शन, ए फॉर दी आई, आई स्टैंड फॉर इंजेक्टेबल एंड ओरल ड्रग्स, ए फॉर अवेयरनेस ऑफ इट्स सीरियसनेस, बी फॉर बिहेवियरल थेरेपी एंड मोटिवेशन, अगेन ई फॉर एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी, टी फॉर टाइमली टेस्ट एंड मॉनिटरिंग, ई फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, एस फॉर स्ट्रेस फ्री लिविंग एंड कीपिंग ए बैलेंस इन लाइफ। ये 8 बातों को लेकर अगर हम उपचार करते हैं तो इसको कहते हैं होलिस्टिक मैनेजमेंट। ये उपचार के द्वारा हमने देखा है बहुत अच्छा रिजल्ट है, एक्सलेंट रिजल्ट है। हम मेडिकल विंग की तरफ से, ब्रह्मा कुमारी इसका मेडिकल विंग की तरफ से, जो हमारे शांतिवन कॉम्प्लेक्स है वहां मोन मोहिनी कॉम्प्लेक्स है, जहां कोई हॉस्पिटल बेस नहीं है, कोई डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेस नहीं है, हम 50-50 फैमिली को जिसको डायबिटीज है बुला के वहां रख के उनको स्पिरिचुअली एम्पावर करके, उनको लाइफस्टाइल चेंज करके, उनको बैलेंस डाइट खिलाकर, उनको एक्सरसाइज करा के, हमने देखा कितने कैंप्स कर चुके हैं, जो एकदम हाई सुगर 600 700 सुगर लेके भी आए थे, सबका नॉर्मल हो गया। इस प्रकार हम भावनगर और नडियाद में भी हम रिसर्च किए पिछले साल, और वहां भी हम रिपोर्ट रिजल्ट देखा, कितने एकदम ऐसे 30-40 फैमिली आके, हम वहां हमारे रिट्रीट सेंटर में जहां कोई डॉक्टर्स नहीं, नर्सेस नहीं, कुछ नहीं, वो स्पिरिचुअल माहौल में रह के सवेरे उठा के उनको मेडिटेशन करा के हम, और उनका डाइट को चेंज किए, एक्सरसाइज कराए, तो सब नॉर्मल हो गया। इसलिए मेरा ये सुझाव है, हम अगर डायबिटीज को होलिस्टिक अप्रोच से अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो ही इसका संपूर्ण उपचार होगा। कई हमको बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, कुछ नहीं होगा तो कम से कम कंट्रोल में रहेगा, और हमारे बच्चों को भी हम इस बीमारी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आज ये समय की आवश्यकता है, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। इसलिए मैं सभी जो भी सुन रहे हैं, मेरे स्वास्थ्य कर्मी भाई और बहनों, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल वर्कर्स हैं, हम सभी मिलकर काम करें और होलिस्टिक अप्रोच से ही डायबिटीज को मैनेज करें तो ही ये बीमारी ठीक हो सकता है। ओके, ओम शांति, ओम शांति। डायबिटीज एक स्ट्रेसफुल डिजीज है। जब तक हम स्ट्रेस को ठीक नहीं करेंगे, डायबिटीज नियंत्रण में होना असंभव है। स्ट्रेस हमारे मन में जब अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार शुरू हो जाते हैं, हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो जब तक हमारे मन में समर्थ विचार, सकारात्मक विचार पैदा नहीं करते हैं, इन नकारात्मक विचार से हम छुटकारा पाना संभव नहीं है। तो राजयोग मेडिटेशन एक सुंदर विधि है जिसके द्वारा हम तनाव से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन इज एन आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो चलें हम डायबिटीज से मुक्त होने के लिए या डायबिटीज को संपूर्ण नियंत्रण में रखने के लिए हम राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, इस योग का प्रयोग भी करते हैं। सबसे पहले आप रिलैक्स होके बैठें, बट थोड़े से रिलैक्सेशन के साथ साथ अलर्ट भी होना जरूरी है, ऐसा ना हो कि नींद आ जाए। अलर्ट होके बैठें, खुशी खुशी से, बड़े तन्मयता के साथ, और थोड़े समय हम ये बाह्य जगत के सारे संकल्पों को विराम देंगे, एक अंतर मन की यात्रा में चलेंगे हम सभी। आप सबसे पहले सोचिए, आप अपने आंखों को खुली रखें, बंद करने की आवश्यकता नहीं है। सामने कोई भी एक निर्धारित कोई भी वस्तु है, कुछ भी चीजें हैं, तो उसमें आंखों को एकाग्र करेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन अंतर्मन के चक्षु से आप अंदर देखिए, अंदर झांकिए, स्वयं को पूछिए कि सचमुच मैं कौन हूं। संसार में अनगिनत मनुष्य हैं, रोज कितने लाखों करोड़ों लोग इस संसार में जन्म लेते हैं, और रोज इस संसार को छोड़कर भी कितने लाखों करोड़ लोग जा रहे हैं। मैं भी इस संसार में एक दिन आया था, मुझे भी एक दिन जाना पड़ेगा। सचमुच में कौन हूं, कहां से आया था, कहां जाऊंगा, सोचने की विषय है ना। देखा जाता है ये जो हमारा शरीर, ये तो हड्डी मांस का एक 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है, ये तो जड़ चीज है, परंतु इसके अंदर एक चेतना शक्ति जिसके द्वारा हम आंखों द्वारा देख रहे हैं, कानों द्वारा सुन रहे हैं, मुख द्वारा बोल रहे हैं, वो चेतना शक्ति वही मैं हूं। वही मैं आत्मा हूं, एक डिवाइन पॉइंट ऑफ लाइट हूं जो मेरे मध्य मस्तिष्क में, मैं एक मास्टर की तरह सारे शरीर को नियंत्रण करने के लिए स्थित हूं। दोनों भ्रुकुटी के बीच में, मस्तक के बीच में मैं एक चमकता हुआ सितारा, मैं एक आत्मा हूं, एक चेतना शक्ति, अजर, अमर, अक्षय और अविनाशी हूं। इस शरीर विनाशी है, नश्वर है, ये तो मेरा वस्त्र समान है। ये विश्वरूपी रंग मंच पर भिन्न भिन्न नाम रूप वाले शरीर रूपी वस्त्र धारण कर मैंने बहुत जन्म अभिनय करता। इस संसार में मेरी तरह अनगिनत मनुष्य आत्माएं अभिनय कर रहे हैं, तो मैं एक आत्मा हूं। जैसे मैं आत्मा एक ज्योति हूं, ऐसे ही मेरे पिता परमात्मा, हम सभी आत्माओं के पिता परमात्मा, वो भी एक दिव्य ज्योति है, परम ज्योति है। ये साकार मनुष्य लोक से बहुत ऊपर, सूरज चांद सितारों से भी ऊपर, ये पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की दुनिया से भी ऊपर, एक छठा महातत्व, अखंड ज्योतिर्मय ब्रह्म महातत्व, जहां चहो और सुनहरी लालिमा, प्रकाश ही प्रकाश, वो सर्वोच्च धाम जहां मेरे पिता परमात्मा रहते हैं, उस ब्रह्मलोक में परम धाम शांति धाम है। वहां मेरे पिता परमात्मा जो सबके कल्याणकारी हैं, सदा शिव हैं, वो शिव बाबा वहां सूर्य समान चमक रहे हैं। बाबा की शक्तिशाली किरणें शांति की, पवित्रता की, प्रेम की, आनंद की किरणें चारों ओर बिखर रही है, और वो किरणें उतर उतर कर मुझ आत्मा में समा रही है। विजुलाइज कीजिए उस दृश्य को, ऊपर बाबा चमक रहे हैं, शिव परमात्मा ज्ञान सूर्य समान, उनसे शक्तिशाली किरणें फुहारे के माफिक उतर उतर कर मुझ आत्मा में समा रही है, और वो किरणें मेरे शरीर के अंग अंग में फैल रही है। मेरे पेट के पृष्ठ भाग में स्थित अब पैनक्रियास ग्रंथि पर भी बाबा की किरणें पड़ रही है। ओहो, मैं एक अलौकिक प्रभाव देख रहा हूं। मेरे बीटा सेल्स जो कि प्राय लगभग नष्ट होने जा रहे थे, मेरा इंसुलिन का क्षरण ना के मात्र हो गया था, अब बाबा की किरणों से पेनक्रियास की ग्रंथि के सारे बीटा सेल्स रिजुविनेट हो गए हैं, पुनः इंसुलिन का क्षरण शुरू हो गया है। बाबा की किरणें मेरे अग्नाशय ग्रंथि पर पड़ रही है, मेरे शरीर से पुनः पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का क्षरण हो रहा है, मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस भी पुनः समाप्त हो रहा है, मेरे रक्त में संचालित शुगर की कणिकाएं अब दूर दूर तक एक एक कोशिका के अंदर बड़े सहज रीति से ही प्रवेश हो रहे हैं। मेरे रक्त में शुगर की मात्रा अब बिल्कुल सामान्य होता जा रहा है। मुझे कितनी शक्ति की अनुभूति हो रही है। बाबा की किरणें ऊपर से उतर रही हैं, मुझ आत्मा में समाकर मेरे शरीर के अंग अंग में फैल रही है, मेरे पेनक्रियास में बीटा सेल्स पर बाबा की किरणें पड़कर इंसुलिन का स्राव हो रहा है और मेरे शुगर की मात्रा सामान्य होता जा रहा है। मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा कोलेस्ट्रॉल, मेरे थायराइड फंक्शन, अब सब कुछ बिल्कुल सामान्य होता जा रहा है। डायबिटीज के कारण जो भी दुष्प्रभाव मेरे शरीर में हो गया था, अभी बाबा की किरणों से सब कुछ हीलिंग होकर बिल्कुल मैं स्वस्थ बनता जा रहा हूं। बाबा मुझे सदा निरोगी भव का वरदान दे रहे हैं। ओहो, कितना ना ये सुखद अनुभव है। अब मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं, निरोगी हूं। मैं परमात्मा पिता की संतान हूं। बाबा मेरी छत्र छाया है। संसार में मेरा अकल्याण हो ही नहीं सकता है। स्वयं भाग्य विधाता परमात्मा मेरे पिता हैं। संसार के भयंकर आंधी और तूफानों में मेरे पिता परमात्मा ही तो सर्वश्रेष्ठ सहारा है। मुझे किस बात की चिंता है, किस बात का गम है? मैं बेफिकर हूं, निश्चिंत हूं। मेरी सारी चिंताएं समाप्त हो गई। मैं बाबा की गोद में संपूर्ण निश्चिंत हो गया। बाबा मुझे सदा निश्चिंतता का वरदान दे रहे हैं। बच्चे, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। बाबा मुझे अभय का वरदान दे रहे हैं। मैं अब संपूर्ण निश्चिंत हूं, तनाव मुक्त हूं। बाबा मेरे कदम कदम में साथी हैं, मेरे जीवन के सहारे हैं, मेरे साजन हैं, मेरे सर्जन हैं, मेरे शिक्षक हैं, मेरे रक्षक हैं। मैं अब संपूर्ण रोग मुक्त हूं, तनाव मुक्त हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति, प्रणाम। अवेकनिंग विथ न्यू वे ऑफ हीलिंग इस वेब सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। समय ने करवट बदली है, समय बदलता जा रहा है और समय के साथ साथ अनेक अनेक चैलेंजेस हमारे सामने आ गए हैं। अनेक प्रकार की बीमारियां फैलते जा रही हैं। इसका सामना करने के लिए, इसको फेस करने के लिए हीलिंग एनर्जी को बढ़ाने की आवश्यकता है। हम सभी हेल्थ सेक्टर में कार्य करते हैं। हेल्थ, हेल्थ माने क्या? हील प्लस डे, इसको हेल्थ कहा गया है। डे माने योर सेल्फ, हेल्थ यानी हील योर सेल्फ, यानी ये जो हीलिंग एनर्जी है वो कुदरती नेचुरली हमारे अंदर ही उपस्थित है। तो ये हीलिंग एनर्जी क्या करती है? तो ये हीलिंग एनर्जी हमारी शरीर के जो सेल्स है, पेशियां है, उसको पोषण देती है, उसको नरिश करती है और जब जब आवश्यकता हो उसको रिपेयर भी करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, उसकी वाइटलिटी को मेंटेन करते हैं, उसके वेल बीइंग का वो ख्याल रखते हैं। ग्रीक के जो ग्रेट फिजिशियन है हिपोक्रेट्स, उन्होंने भी कहा है, नेचुरल फोर्सेस विथ इन अस आर द ट्रू हीलर ऑफ डिसीज। माने कोई भी डिसीज हो, बीमारी हो, लेकिन हमारे अंदर ही हीलिंग एनर्जी है, नेचुरली वो उपस्थित है, उसको यूज करने की आवश्यकता है। तो WHO ने भी जो हेल्थ की व्याख्या की है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेल बीइंग इन फोर एस्पेक्ट, फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल। तो फिजिकल माने शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर जब हम वेल बीइंग स्वस्थता को पाते हैं, तभी हम कंप्लीट हेल्दी है, संपूर्ण स्वास्थ्य हमें प्राप्त हुआ है, ऐसे कहा जाता है। ये जो स्वस्थता है ना, ये स्वस्थ शब्द से आई है। स्वस्थ का मीनिंग है स्व में स्थित होना। तो ये स्व क्या है? स्व माने मैं खुद, तो मैं खुद कौन हूँ? तो ये जो दिखाई देने वाला शरीर है, ये मैं हूँ क्या? क्वेश्चन मार्क है। लेकिन हर व्यक्ति ये ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन, ये ह्यूमन शब्द से आया है, इसका मतलब है पांच तत्वों से बना ये शरीर। और बीइंग यानी एनर्जी, बीइंग यानी सोल, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट, और इसको ही आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहा गया है। तो हम सभी पहले आत्मा है और ये शरीर को धारण करते हुए हम कर्म करते हैं। ये जो हीलिंग एनर्जी है, इसको हम चार एस्पेक्ट से देखेंगे, जैसे फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल। जब हम फिजिकल हीलिंग एनर्जी का अभ्यास करते हैं, तब हमें चार बातें हमारे सामने आती है, भोजन, नींद, एक्सरसाइज और जब जरूरी हो मेडिसिन। जब भोजन शुद्ध होता है, सात्विक होता है, परमात्मा की याद में किया जाता है, तो वो भोजन हीलिंग फूड बनता है, प्रसाद बनता है। और जब नींद साउंड स्लीप होती है, डेल्टा स्लीप होती है, उसके कारण हीलिंग पावर बढ़ जाती है। और साथ साथ में जब हम एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, तो हीलिंग पावर बढ़ाने के लिए उससे हेल्प होती है। जब जब जरूरत लगे तब तब जब हम मेडिसिन का सेवन करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ सेवन करते हैं, तो वो भी एक हीलिंग का काम कर सकती है। यानी फिजिकल स्तर पर हीलिंग एनर्जी को बढ़ाने के लिए ये चार बातें हैं। अभी हम देखेंगे कि मेंटल हीलिंग एनर्जी क्या होती है। तो हमारा मन जब शुद्ध होता है, शक्तिशाली होता है, तो हीलिंग पावर बढ़ती है। तो मन क्या करता है? मन सोचता है, भावनाओं को क्रिएट करता है। कहा जाता है कि टीम से मन बनता है। तो टीम क्या होती है? TEAM, टी फॉर थॉट्स, ई फॉर इमोशंस, ए फॉर एटीट्यूड और एम फॉर मेमोरी। यानी जो हमारे मन में सोच विचार है, भावनाएं हैं, जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण है, और हमारे जीवन में कुछ अच्छी घटना या कुछ बुरी घटना होके जाती है, उसकी स्मृति हमारे मन में होती है। तो TEAM, इस टीम से हमारा मन बनता है। जब ये टीम पॉजिटिव होती है तो हीलिंग पावर बढ़ती है, और जब टीम निगेटिव होती है तो हीलिंग पावर कम हो जाती है। तो साइंस क्या कहता है, विज्ञान क्या कहता है, कि हमारी हर सोच हमारे शरीर के हर सेल पर, पेशी पर इफेक्ट करती है, उसका प्रभाव डालती है। तो हमारी हर सोच हर पेशी पर हर सेकंड को 1,00,000 रिएक्शन करती है। जब हमारा मन स्टेबल होता है, शांत होता है, तो रिएक्शन 1,00,000 होती है। लेकिन जब हमारा मन अनस्टेबल होता है, अगर हमारे मन में गुस्सा है, दुख है, चिंता है या भय है, तो इसके कारण नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस ये बढ़ते जाते हैं, वो 1 लाख नहीं होते हैं, कभी कभी 1.5 लाख और उससे भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जब केमिकल रिएक्शन हर सेल में बढ़ जाते हैं, सेल अपने ईज को, सहजता को, हेल्थ को खो देता है और डिस ईज उत्पन्न होता है और इसको ही हम बीमारी कहते हैं। साइंस हमें और भी कुछ नॉलेज देती है कि हमारी हर सोच साइको, न्यूरो, इम्यूनो, एंडोक्राइनोलॉजी पर इफेक्ट करती है। साइको यानी मानसिक स्तर पर जब बदलाव होता है, हमारे सोच, विचार या भावनाओं में बदलाव होता है, तो उसका इफेक्ट न्यूरो यानी न्यूरॉन्स के ऊपर, ब्रेन के सेल के ऊपर होता है। साइको, न्यूरो, इम्यूनो यानी जो इम्यून सेल है, रोग प्रतिकार शक्ति के सेल है, जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिकार निर्माण करने की जो सिस्टम है, उसके ऊपर इफेक्ट होता है। और एंडोक्राइनोलॉजी माने हमारे शरीर के हर ग्रंथि पर, हर हार्मोन पर उसका इफेक्ट होता है। अगर हमारी सोच पॉजिटिव हो तो हमारे ब्रेन में पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, हमारी ग्रंथि भी अच्छी तरह कार्य करने लगती है और हॉर्मोन्स भी बैलेंस रहते हैं, हार्मोनी में रहते हैं और हम हेल्दी हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। और यही सोच अगर निगेटिव हो तो इसका सारा निगेटिव इफेक्ट आ जाता है और बीमारी को हम आमंत्रित करते हैं। टीम का साइंस हम जानेंगे। थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड और मेमोरीज हाइपोथैलेमस पर इफेक्ट डालती है, वहां से न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज होते हैं, वो हर सेल पर इफेक्ट डालते हैं। अगर टीम निगेटिव हो तो स्ट्रेस हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, सिंपैथेटिक डोमिनेंस हो जाता है और हीलिंग एनर्जी कम हो जाती है और डिसीज यानी बीमारी आ जाती है। अगर टीम पॉजिटिव हो तो एंडोर्फिन ये हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, साथ साथ में पैरासिंपैथेटिक डोमिनेंस आ जाता है और हीलिंग एनर्जी बढ़ती है। इसके कारण हम हेल्थ और हैप्पीनेस को पाते हैं। और भी एक रिसर्च हो गया है, इसको पियानो रिसर्च कह सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 2 ग्रुप्स बनाए गए और दोनों ही ग्रुप को पियानो बजाने के लिए कहा गया। एक ग्रुप के हाथ में एक्चुअल पियानो दिया और उनको कहा कि रोज 1 घंटा आपको पियानो बजाना है, और दूसरे ग्रुप को कहा गया कि आपको इमेजिनरी यानी मानसिक स्तर पर केवल पियानो बजाना है। और फिर दोनों के ब्रेन के स्कैन्स किए गए और न्यूरो साइंटिस्ट ने इसका स्टडी किया। हम स्लाइड में देख रहे हैं कि जिन्होंने एक्चुअल पियानो बजाया उनका ब्रेन का स्कैन, और जिन्होंने केवल मानसिक स्तर पर पियानो बजाया उनका ब्रेन का स्कैन एग्जैक्टली सिमिलर है। माने हम मानसिक रूप में जो भी सोच विचार क्रिएट करते हैं, भावनाएं क्रिएट करते हैं, उसका असर भी हमारे ब्रेन पर, हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे व्यक्तिमत्व पर होता है। तो हमारे ये टीम के ऊपर हमें बहुत सारा अटेंशन देने की आज आवश्यकता है। जब हमारा हम माइंडसेट चेंज करते हैं, जब हम माइंडसेट पॉजिटिव करते हैं तो सारे चेंजेस पॉजिटिव हो जाती है। कहते हैं ना कि बहुत सारे डिसीजेस, मोर देन 85% डिसीजेस ये साइकोसोमेटिक है, पहले मन में आते हैं और फिर शरीर पर प्रकट होते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि इस टीम को हमें पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक रखना है। एनी डिसीज कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग मेंटल पैटर्न। ह्यूमन माइंड हैज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे मन में उत्पन्न हुए थॉट्स नेचुरल केमिकल को सिक्रीट करते हैं, वही मेडिसिन का काम करते हैं। जब हमारे मन में पॉजिटिव थॉट्स उत्पन्न होते हैं, शुभ संकल्प, मंगल भावनाएं उत्पन्न होती है, उसके रिस्पांस में जब शरीर नेचुरली कुछ अच्छे केमिकल सिक्रीट करता है और ये पॉजिटिव केमिकल जो सिक्रीट होते हैं वो एक मेडिसिन का काम भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें अटेंशन देना है हमारे सोच विचार के ऊपर, हमारे भावनाओं के ऊपर, हमारे एटीट्यूड के ऊपर और हमारी स्मृति के ऊपर। यही टीम जब पॉजिटिव होती है तो हीलिंग एनर्जी बढ़ती है, और यही टीम जब निगेटिव होती है तो हीलिंग एनर्जी घट जाती है। मन में पॉजिटिव सोच विचार है तो कोई भी जहर हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। अगर व्यक्ति का माइंडसेट अगर निगेटिव रहा, उसके सोच विचार भावना अगर निगेटिव रहे, तो कितना भी बड़ा मेडिसिन, कितना भी अच्छा मेडिसिन उसको दिया जाए, फिर भी उसके ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए हमारा मन सदा पॉजिटिव रखना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग में ही हीलिंग की पावर होती है। हर थॉट को पॉजिटिव रखना, टीम को पॉजिटिव रखना, हमारे सोच विचार को सकारात्मक रखना, शुभ रखना, मंगल रखना, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। और हेल्थ भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमें हेल्थ को पाना है, हमारी सोच को सदा पॉजिटिव रखना है, तो हमें मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में हमारे जो सोच विचार होते हैं वो शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, सकारात्मक होते हैं, दिव्य होते हैं और शक्तिशाली होते हैं। यानी हमारे विचार प्योर होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, पावरफुल होते हैं, डिवाइन होते हैं और इलेवेटेड होते हैं। तो मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। राज योगा मेडिटेशन ये हमारी हेल्दी वेल्दी हैप्पी लाइफ की की है, चावी है। तो राज योगा, राज माने राजा बनना, यानी हमारे जीवन के हम राजा बनते हैं। राजा जैसे हेल्दी वेल्दी हैप्पी होते हैं। और योग, योग माने मेडिटेशन, मेडिटेशन ये मेडरी शब्द से आया है और उसका मीनिंग है टू हील। तो मेडिटेशन हमारे शरीर को हील करता है, हमारे मन को प्रसन्न करता है, शक्तिशाली करता है, हमारे रिश्तों को भी वो मधुर करता है। यही मेडिटेशन की एनर्जी वातावरण में भी रेडिएट होती है और वायुमंडल को पॉजिटिव बनाती है। यही मेडिटेशन की एनर्जी हीलिंग का रूप लेकर बाकी व्यक्तियों को भी हम वाइब्रेशन के माध्यम से हीलिंग एनर्जी को प्रवाहित करके, वाइब्रेशन देके, सकाश देके उनको भी हेल्दी बना सकते हैं। तो ये हीलिंग एनर्जी जब प्रवाहित होती है तब उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं, सकाश कहते हैं। और यही विधि से हम खुद भी हेल्दी हो सकते हैं और दूसरों को भी हेल्दी बनाने के लिए हेल्प कर सकते हैं। यही मेडिटेशन की जो हीलिंग पावर है वो हमारे मन को शांति, प्यार और आनंद से भरती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो शांति को पाते हैं, पीस को पाते हैं, और यही शांति हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी बनाती है। निश्वास की जो मात्रा है, रेस्पिरेशन का जो रेट है, उसको नॉर्मलाइज करती है। जब कभी हमारे मन में गुस्सा आता है तो श्वास बढ़ जाते हैं और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ सकता है। मेडिटेशन से श्वास की लंबाई बढ़ जाती है और गहराई भी बढ़ जाती है। इसी के कारण मेडिटेशन से हमारी उम्र बढ़ जाती है। तो मेडिटेशन से शांति हम प्राप्त करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम हेल्दी बना सकते हैं और हमारे लाइफ को भी हम बढ़ा सकते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं हीलिंग एनर्जी बढ़ जाती है, प्यार की भावना बढ़ जाती है। जब हमारे मन में प्यार की भावना उमड़ती है तो हमारे ब्लड वेसल के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट होता है। ब्लड वेसल, रक्त वाहिनी, खून की नली जिसकी दीवार होती है वो रिलैक्स होती है। इसके कारण खून का जो प्रवाह है वो अच्छी रीति बहने लगता है और सारे ऑर्गन्स को ब्लड सर्कुलेशन अच्छा मिल जाता है और हम हेल्दी हो जाते हैं। इसके विरुद्ध जब हम दुख में होते हैं, गुस्से में होते हैं, क्रोध में होते हैं, चिंता में होते हैं, तो ब्लड वेसल हमारी सिकुड़ जाती है, खून की नली कॉन्ट्रैक्ट होती, सिकुड़ जाती है और बाकी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कम मिलने के कारण फिर बीमारी आती है। ऐसा ही देखो तो अगर जब मेडिटेशन करते हैं तो खुशी की भावना उभर के आती है और ये जो खुशी है, ये जो आनंद है, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पर अच्छा प्रभाव डालती है। हमारी ग्रंथि यथा योग्य काम करने लगती है, हार्मोन्स का सिक्रीशन भी वेल बैलेंस्ड होता है और यथा योग्य मात्रा में होता है, इसीलिए फिर हमारी हेल्थ भी सुधरते जाती है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि डायबिटीज बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, थायराइड के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, हार्ट डिजीज के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। इस सब के कारण क्या है? इस सब का कारण ही है कि खुशी का अभाव, प्यार का अभाव, शांति का अभाव और दुख बढ़ते जा रहा है, चिंता बढ़ते जा रही है, गुस्सा बढ़ते जा रहा है। ये सभी निगेटिव इमोशंस के कारण, निगेटिव सोच विचार के कारण ये सभी हेल्थ के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लेकिन जब हम हमारा मेंटल पैटर्न रिवर्स करते हैं, माइंडसेट को पॉजिटिव बनाते हैं, तो फिर से हम हेल्थ को पा सकते हैं, हैप्पीनेस को महसूस कर सकते हैं। जब हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, हमारी हीलिंग एनर्जी बढ़ जाती है, तो हीलिंग एनर्जी हमारे शरीर से रेडिएट होकर बाहर जाती है और उसका ऑरा बनता है, और यही ऑरा हमारे शरीर का प्रोटेक्शन करता है, निगेटिव एनर्जी से हमारे शरीर को बचाता है और बीमारी से भी हमारे शरीर को बचाकर हमें हेल्दी रखता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, हमारी टीम पॉजिटिव हो जाती है, उसका इफेक्ट पानी पर भी होता है। जैसे शरीर पर होता है तो शरीर के अंदर का जो पानी है, शरीर के अंदर का जो ब्लड है, उसके अंदर भी पॉजिटिव इफेक्ट होता है। डॉक्टर इमिटियो जो है, उनका जो वाटर एक्सपेरिमेंट है, उसका एक रिसर्च मुझे देखने में आया। अगर आप भी यूट्यूब पर गए और डॉक्टर इमिटियो वाटर एक्सपेरिमेंट ऐसा आपने सर्च किया तो आप भी ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में उन्होंने एक रिसर्च हमारे सामने रखा है। एक हार्ट डिजीज का पेशेंट है, उसका एक ड्रॉप ब्लड लिया गया और उसको चेक किया गया, तो उसमें से जो आरबीसी है वो डिस्चार्ज पाए गए, एक दूसरे को चिपके हुए पाए गए, तो उसी पेशेंट को एक स्ट्रक्चराइज वाटर पीने के लिए दिया गया। स्ट्रक्चराइज वाटर माने क्या? जब मेडिटेशन करते हैं तब पानी लेकर बैठना है, तो हमारे मेडिटेशन के जो पॉजिटिव एनर्जी है, हीलिंग एनर्जी है, वो जो वाटर है, पानी है, वो एब्सॉर्ब करता है और उसको ही स्ट्रक्चरल वाटर कहा गया है। तो ऐसा पानी उस पेशेंट को दिया गया और 12 मिनट के बाद उसी पेशेंट का एक ड्रॉप ब्लड का लेकर चेक किया गया, तो बदलाव ऐसा पाया कि जो पहले जो आरबीसी चिपक के बैठे थे वो अलग अलग हो गए, वो सेपरेट हो गए, वो चार्ज हो गए और वो स्लीपरी भी हो गए। यानी मेडिटेशन के कारण जो स्ट्रक्चराइज वाटर हुआ है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जैसा बदली हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, वो हीलिंग वाटर हो जाता है और वो हीलिंग वाटर पीने के बाद में हमारे ब्लड में, खून में पॉजिटिव चेंजेस आ जाते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट जो डॉक्टर इमिटियो ने किया है, उसका वीडियो देखने के बाद में मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मेडिटेशन का इतना अच्छा इफेक्ट होता है, तो डायरेक्ट हमारे खून के ऊपर, हमारे आरबीसी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पाया गया है। तो ऐसा स्ट्रक्चराइज वाटर अगर बीमार व्यक्ति पीता है तो उसकी हीलिंग पावर बढ़ जाती है, तो उसमें फास्ट रिकवरी होती है और वो जल्दी स्वस्थ और हेल्दी हो सकता है। तो हमने जाना कि हेल्थ माने हील योर सेल्फ। हमारे अंदर ही हीलिंग एनर्जी है, हीलिंग पावर है। फिजिकली हील करने के लिए भोजन, नींद और एक्सरसाइज की जरूरत है। मेंटल हीलिंग करने के लिए हमारे टीम को पॉजिटिव रखने की आवश्यकता है। सोशल हीलिंग करने के लिए खुद को आत्मा समझ, दूसरों को भी आत्मा समझ, भाई भाई के लेवल पर एक दूसरे के व्यवहार में अंडरस्टैंडिंग रखने की जरूरत है। और चौथी बात, स्पिरिचुअल हीलिंग माने मेडिटेशन से जो हीलिंग होता है उससे तो मिरेकल्स होते हैं, तो ये राज योगा मेडिटेशन सबने सीखना चाहिए और हमारे डेली रूटीन लाइफ में, एक लाइफस्टाइल के रूप में, एक हमारे दैनंदिन जीवन में, जैसे हम रोज भोजन करते हैं तो ऐसे ही हमें रोज मेडिटेशन करना है। तो ये राज योगा मेडिटेशन राजा बनाने वाला मेडिटेशन है, हेल्दी वेल्दी हैप्पी लाइफ बनाने वाला मेडिटेशन है। इसको हम सीखेंगे, हमारे रोज के लाइफ में इसको अप्लाई करेंगे, हमारे दैनंदिन जीवन में उसको रूटीन बना देंगे। इस अवेकनिंग प्रोग्राम में हमें जागरूक होना है, खुद से वादा करना है कि रोज हम मेडिटेशन करेंगे, हमारे टीम को सदा पॉजिटिव रखेंगे। हमारे जीवन में विज्ञान के साथ साथ जब हम अध्यात्म को लाते हैं, साइंस के साथ साथ जब हम स्पिरिचुअलिटी को लेकर आते हैं, तो हमारा जीवन एक संगीत बनता है, हमारा जीवन एक उत्सव बनता है और एक नई स्वर्णिम दुनिया लेकर आ सकता है। तो इसी स्वर्णिम दुनिया बनाने के लिए हम सभी मिलकर राजयोग का अभ्यास करेंगे और न केवल खुद को तो पूरे समाज को, पूरे विश्व को हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनाएंगे। इसी के ऊपर एक छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। सीधा होकर बैठना है, अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ, साक्षी भाव से सांसों को महसूस करना है। कमर के नीचे का पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों कंधे, दोनों हाथ, सारी उंगलियां रिलैक्स, पेट रिलैक्स, छाती रिलैक्स, पीठ रिलैक्स, मान और गर्दन रिलैक्स, मस्तक और चेहरा रिलैक्स। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में, जहां हम तिलक लगाते हैं, वहां पर विजुअलाइज करें, फील करें एक दिव्य सितारा। इस सितारे की रोशनी चारों ओर फैल रही है। ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं। हर सोच विचार मेरा क्रिएशन है। सोच विचार को पॉजिटिव रखना ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरी हर सोच सदा शुद्ध हो, सकारात्मक हो, इसके ऊपर मैं अटेंशन देती हूँ। मैं हेल्दी हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं आरोग्य संपन्न हूँ, मैं खुश हूँ, मैं आरोग्य संपन्न हूँ। मेरी हेल्थ मेरी जिम्मेदारी है। मेरी हर सोच मेरे शरीर पर, मेरे मन पर इफेक्ट डालती है। जैसा मैं सोचती हूँ वैसे बनती जाती हूँ। मैं परफेक्ट हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं निरोगी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं आरोग्य संपन्न हूँ। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। ओम शांति।
ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज एवं मेडिकल विंग, राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन, RERF आपके लिए लेकर आए हैं राजयोग मेडिटेशन कोर्स। आइए इस अंतर मन की यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। राजयोगा मेडिटेशन कोर्स का आगामी सत्र सोमवार से गुरुवार, मंडे से थर्सडे शाम 7 बजे से 8 बजे तक मेडिकल विंग के फेसबुक पेज facebook.com/medicalwinghq/live व मेडिकल विंग के यूट्यूब चैनल youtube.com/bkmedicalwing/live। ध्यान रहे इसका ऑनलाइन लाइव प्रसारण होगा। व्हाट्सएप 8619937031। Awakening.